नमस्कार दर्शक मित्रों, सुना है कि एकांत और अकेलेपन ये दो शब्द समान दिखने वाले लेकिन इनमें महान अंतर है। एकांत में शांति है, अकेलेपन में घबराहट है। अकेलेपन ये बाहर की जर्नी है तो एकांत ये हमारी आंतरिक यात्रा है। मनुष्य ने बाहर से बहुत सारे आविष्कार कर लिए हैं लेकिन एकांत की ये अंदर की यात्रा खोजने के लिए हम एक नया प्रोग्राम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग। और इस प्रोग्राम में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हमारी जर्नी में साथ देने के लिए डॉक्टर सचिन परब जी हमारे साथ होंगे, हमारा पूरा मार्गदर्शन करेंगे। मैं डॉक्टर सचिन जी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ।
थैंक यू
डॉक्टर सचिन। इन्होंने अपनी मेडिकल पढ़ाई MBBS पूरा किया और उसके पश्चात फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक रिसर्च कंसल्टेंट के रूप में आप कार्यरत हैं। आप एक बहुत अच्छे काउंसिलर हैं और साथ साथ कॉरपोरेट ट्रेनर भी हैं। विशेष बात यह है कि पिछले 21 वर्षों से आप राजयोगा का अभ्यास कर रहे हैं और 20 वर्षों से आप व्यसन मुक्ति पर, डी एडिक्शन पर बहुत ही गहराई से आपने उसका रिसर्च करते हुए पूरे भारत देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जाकर 7,500 ट्रेनर्स को आपने ट्रेनिंग दी है। 10,000 लोगों तक आप पहुंचकर उनके जीवन में रोशनी भरने का बहुत बड़ा कार्य आपने किया है और आपकी इसी कार्य की सराहना के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको पुरस्कारों से सम्मानित किया है। तो इस तरह से बहुआयामी व्यक्तित्व हमारे साथ है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं फिर से आपकी ओर से भी इनका फिर से स्वागत करती हूँ। नमस्ते।
नमस्ते।
मेडिटेशन ये शब्द पिछले कुछ समय से बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। हिंदुइज्म और बौद्धिज्म में मेडिटेशन एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी लेकिन क्यों अभी इन्हीं दिनों में, पिछले कुछ टाइम से ही मेडिटेशन ये शब्द इतना क्यों पॉपुलर हो रहा है, या तो हम कहेंगे इसकी जरूरत इतनी क्यों महसूस हो रही है?
आपने ठीक कहा, जो शब्द जरूरत इसकी क्यों महसूस हो रही है, हम कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसका मतलब लोग अभी जितनी भी उपचार पद्धति है उसमें से लोग अभी महसूस कर रहे हैं कि कुछ हमको नया चाहिए जो कि हमारे बीमारियों में केवल रिलीफ ही न दे लेकिन उनको जड़ से दूर करे। तो इस तरफ पूरे विश्व का ध्यान जा रहा है। इवन जो देश मेडिटेशन को या इन पद्धतियों को इतना नहीं मानते थे, हमारा जो पश्चिमी देश है जैसे अमेरिका, यूरोप है, वहां पर इसका स्वीकार बढ़ने लगा है। अमेरिका जैसे प्रगत देश के अंदर CAM माने कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए बजट्स निर्धारित किया गया है। ये हमको यही दर्शाता है कि ये पद्धतियां है, फिर वो मेडिटेशन हो योग हो, इसकी नितांत आवश्यकता है और केवल आवश्यकता नहीं, ये रिजल्ट्स दे रहे हैं। इसके लिए ये पॉपुलर बढ़ते जा रहा है। और दूसरी तरफ हम एलोपैथी में जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली पद्धत है, जिसमें हम देख रहे हैं कि दवाइयां तो है पर अभी जैसे हमारे सामने उसमें भी प्रश्न है कि जैसे एंटीबायोटिक्स है तो एंटीबायोटिक्स के अंदर रेजिस्टेंस आता जा रहा है, माने दवाइयां काम नहीं कर रही जितना चाहिए उतना, या फिर हम ऐसे कहें कि ऐसे बैक्टीरियास या वायरसेस तैयार हो रहे हैं जो दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। तो एक तरफ ये है कि देर आर लिमिटेशंस ऑफ एलोपैथी, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति है उसके कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स माना जिसमें हार्ट की बीमारी है या कैंसर है या स्ट्रोक है या जॉइंट्स के प्रॉब्लम है। तो अभी जॉइंट्स का प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, भारत में ऑस्टियोआर्थराइटिस नंबर वन है, इट्स नॉट द डायबिटीज जिसके बारे में बताया जाता है। तो घुटनों का दर्द है तो इसमें ऑप्शन जो एलोपैथी के पास वो क्या है, पेन किलर्स है, माना दर्द को दूर करने वाली दवाइयां। अभी ये दवाइयां हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनसे एसिडिटी होता है, वजन बढ़ता है और गलत रूप से गलत डोज में लिया जाए तो इससे किडनी के ऊपर भी असर पड़ता है। मैं खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमको इसको बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, माना आपको अपनी जीवन पद्धति को बदलना ही पड़ता है, जिसमें आपको वजन कम करना है, नियमित व्यायाम करना है और मन को पॉजिटिव रखना है, साथ में मेडिटेशन अगर करें तो हम हमारी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं।
मतलब आपका कहना ये है कि मेडिटेशन ज्यादा पॉपुलर होने का रीजन है क्योंकि बीमारियों के लिए कहीं इंसान उसको एक अल्टरनेटिव पद्धति में उसको ढूंढ रहा है।
अभी उसके ऊपर अच्छी तरह से रिसर्च हो रहा है क्योंकि जमाना अभी साइंस का है, साइंस को लोग ज्यादा मानते हैं, तो लोग इसके ऊपर रिसर्च जैसे आ रहे तैसे वैसे लोगों को एक्सेप्ट करना बढ़ता जा रहा है। और सबसे खुशी की बात, अभी आप सब जानते होंगे कि 2015 जो वर्ष है, पहला वर्ष है जहां पर हमारे माननीय पंत प्रधान जी ने पूरे विश्व को एक कॉल दिया था, जो पहली बार ऐसे हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
जी
सभी देशों ने यूनानिमसली एक्सेप्ट किया गया और विद इन वन वोट, माना एक ही बार कहने से लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये दर्शाता है कि लोग इसके प्रति सकारात्मक है और लोगों को इसका फायदा दिखाई दे रहा है। तो भले आपने जैसे कहा ये ईस्टर्न कंट्रीज से आया है, बुद्धिज्म या हिंदू यहां से आया है, लेकिन लोगों का एक्सेप्टेंस इसके प्रति ज्यादा है और इसके ऊपर अनुसंधान काफी हो रहे हैं और फायदा भी दिखाई दे रहा है।
एग्जैक्टली मेडिटेशन और योग, ये दोनों शब्द एक ही है या मेडिटेशन का अर्थ कुछ योग से भिन्न है?
ओरिजिनल शब्द जो है, जैसे कि अगर हम इतिहास को देखें तो सबसे पुराना शास्त्र जो कहा गया है वो है आयुर्वेद, हेल्थ के हिसाब से
जी।
और आयुर्वेद में ऐसा एक श्लोक आता है कि आप केवल बीमारी को ही ठीक नहीं करो, लेकिन जो बीमार नहीं है उनका स्वास्थ्य भी बनाए रखो। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, माना आप जो स्वस्थ है उनका स्वास्थ्य बनाए रखो और जो बीमार है उसकी बीमारी दूर करो। तो आयुर्वेद में प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया, जो आज के हमारे एलोपैथी में एक सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। इसका भी काम है कि बीमारी आने से पहले उसको रोक या ऐसे स्टेप लिए जाए जिससे कि बीमारी आए ही नहीं। जैसे हम वजन कम करें, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक रखे, हमारा भोजन ठीक रहे या एक्सरसाइज करें रेगुलरली, ये आज हम कहते हैं, लेकिन आयुर्वेद में पहले से ही बता के रखा हुआ है। तो सभी लोग, विश्व के सभी लोग मानते हैं कि सबसे पुरानी जो किताब है वो आयुर्वेद की है, वो सुश्रुत संहिता है या चरक संहिता, ये सबसे पुराने, और उसमें योग ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। अभी बात ऐसी हुई है, कन्फ्यूजन थोड़ा ऐसा है कि पश्चिम देशों में एक्सरसाइज के लिए ज्यादा महत्व है तो उन्होंने योग को योगा कर दिया। तो योग और योगा, हालांकि अंग्रेजी में हम योग YOG लिखते हैं या YOGA लिखते हैं, लेकिन योगा बोलते ही कुछ लोगों के दिमाग में एक्सरसाइज आ जाता है। तो योगा डेफिनेटली एक्सरसाइज है, लेकिन ओरिजिनल शब्द ये है कि योग शब्द है जो कि संस्कृत के युज शब्द से आया है। युज माना जोड़ना, तो ये मिलन का प्रतीक है। नो डाउट कि जो पतंजलि ने अष्टांग योग बताया उसमें अलग अलग आसन है, 8 प्रकार की चीजें हैं, उसमें आसन एक है तो फिजिकल एक्सरसाइज है, लेकिन साथ में उन्होंने लास्ट जो बताया वो है समाधि। तो आप यम नियम से चालू करते हैं पहुंचते समाधि, बीच में प्राणायाम और आसन है और उनका भी महत्व है, लेकिन योग माना केवल एक्सरसाइज नहीं है। तो ये योग का हुआ और सबसे अच्छा योग या सबसे श्रेष्ठ योग है कि हमारे अंदर जो चैतन्य शक्ति है जिसको साइंस एनर्जी कहते हैं या मेटाफिजिकल एनर्जी कहते हैं, या एक ऊर्जा है जिसको अलग अलग नामों से जाना गया है। हिंदुओं में उसको आत्मा कहा है, उर्दू में उसको रूह कहते हैं, है ना, या अंग्रेजी में सोल कहते हैं, कि देर इज वन एनर्जी जो इस शरीर के अंदर है जिसको अभी वेस्टर्न साइंस भी एक्सेप्ट करने लगा है। तो वो ऊर्जा का सुप्रीम एनर्जी के साथ कनेक्शन, तो सुप्रीम एनर्जी या सुप्रीम सोल, फिर आप उसको परमात्मा को, गॉड को, अल्लाह को, ईश्वर को, नाम अलग अलग है पर वो एनर्जी एक है और सब लोग मानते हैं कि सबका मालिक एक है, गॉड इज वन। मेजॉरिटी लोग इसको मानने लगे और एक्सेप्टेंस अभी बढ़ता जा रहा है। तो जब इस आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है उसी को योग कहते हैं, माने ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योगा है। पर मेडिटेशन ये शब्द यहाँ का नहीं है, वो विदेश से आया है। वहाँ पे मेडिटेशन इस शब्द को लेकर ही इज मेडिटेटिंग ऑन समथिंग, वो मेडिटेट कर रहा है माने वो सोच रहा है, माने एक प्रकार के चिंतन प्रक्रिया को मेडिटेशन कहा गया या मानते हैं लोग। किसी भी विषय के ऊपर यू आर मेडिटेटिंग ऑन व्हाट, ऐसा सवाल पूछते हैं, माने आप मेडिटेशन किसके ऊपर कर रहे हैं, माने आप चिंतन किसके ऊपर कर रहे हैं या आपका ध्यान किसके ऊपर है। तो मेडिटेशन एक लैटिन वर्ड से आया है, जैसे हमारे मेजॉरिटी शब्द भारत में संस्कृत से आए हैं, रूट वर्ड जिसको कहते हैं, वैसे मेडिटेशन का रूट वर्ड है मेडेरी। मेडेरी माना हीलिंग, हीलिंग माना अंदर से ठीक होते जाना। तो मेडिटेशन का अर्थ यह है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अभ्यास करने से हम अंदर से ठीक होने लगते। तो ये दो अलग अलग शब्द है,
मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है लेकिन उसको पर्यायी करके अभी यूज किया जा रहा है अभी के टाइम पर। आपने एक बात बताई कि हम सर्वोत्तम योग जो है वो हमारा उस सुप्रीम के साथ कनेक्ट होना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं लेकिन दुनिया के अंदर जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन वो लोग मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, तो क्या मेडिटेशन में भगवान को याद करना जरूरी है?
मैं इसको ओपन रखूंगा कि कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उससे कुछ तो करना चालू करो। आप भगवान को मानो या नहीं मानो, लेकिन एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा, इस समय पृथ्वी पर जितने लोग हैं 600 करोड़ या 650 करोड़, उसमें से 70% लोग एक ऐसी शक्ति में विश्वास करते हैं जिसको आप गॉड कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो या परमात्मा कहो या सुप्रीम एनर्जी कहो। इवन साइंटिस्ट जो लॉजिकल, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन भी रिसर्च में है, तो हम प्रूफ को मानते हैं, हमको साइंटिफिक प्रूफ है। लेकिन अभी हम भी कुछ ऐसा सोचने लगे है कि क्रिएशन है, माना रचना है, माना रचयिता होना चाहिए। सो क्रिएशन इम्प्लाइज दैट देयर इज सम क्रिएटर, और हम अभी मानने लगे कि एक ऐसी सुप्रीम एनर्जी है जो इस पूरे विश्व को चला रही है। हमको उसके बारे में इतना नहीं पता है अच्छी तरह से, लेकिन हम ये मानते जरूर है कि एक एनर्जी है, मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट, तो 70% लोग इसमें विश्वास रखते हैं। बाकी जो 30% लोग हैं, वो किसी को अगर नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि नेचर इज एवरीथिंग या प्रकृति ही सब कुछ है, तो वो एक बात जरूर मानते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सुप्रीम एनर्जी बाद में आते, लेकिन अगर आप खुद को मानते हो, अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करते हो, तो ये भी बड़ी बात है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक खुदा को नहीं जान सकते।
कहीं ये मान के चलना है, और अगर नहीं भी मानते हैं फिर भी हम मेडिटेशन तो कर ही सकते हैं। अभी मतलब मैंने सुना हुआ है कि दुनिया में बहुत सारे टाइप के मेडिटेशन हैं, एग्जिस्ट है, तो अभी प्रेजेंट सिनारियो में आपके हिसाब से कितने टाइप के मेडिटेशन है और उनमें क्या डिफरेंस है?
ऐसा है, अभी हम 21st सेंचुरी में हैं और बहुत सारे मेडिटेशन के प्रकार या ध्यान की पद्धतियां प्रचलित है। भारत में केवल दो ही पद्धतियां है, एक जिसको हम कहते हैं हठ योग, जिसका काफी प्रचार और प्रसार है, जिसमें प्राणायाम और योगासन आते हैं। हठ योग इसलिए कहते हैं कि हम अपने हाथ और पैर को एक पर्टिकुलर दिशा में रखते हैं या सांस को एक दिशा में रखते हैं। ये सब कर सकते हैं और हरेक की कैपेसिटी के अनुसार अंडर गाइडेंस इसको करना चाहिए, यह हठ योग है। और दूसरा है राजयोग, जिसमें हम शरीर को स्थिर रख के, शरीर भले आपका बीमार हो, जैसे कि समझो किसी को घुटने का दर्द है या कमर का दर्द है, जो कि बहुत कॉमन है आजकल, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, ऑस्टियोआर्थराइटिस हम बोलते हैं, किसी को व्यंग है शरीर में, तो ये सब प्राणायाम योगासन नहीं कर सकते उतना एफिशिएंटली जितना एक नॉर्मल व्यक्ति करता है। तो राजयोग एक ऐसा है जिसमें शरीर का कम और मन और बुद्धि, जो हमारी सूक्ष्म शक्ति है, उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो ये दो प्रिंसिपल है, राजयोग में हम मन और बुद्धि को परमात्मा में एकाग्र करते हैं। तो ये दो अप्रोचेस हिंदू फिलॉसफी में है, हठ योग और राजयोग, बाकी सब इसके परमिटेशन और कॉम्बिनेशन है। माना इन दो पद्धतियों को अलग अलग तरीके से लोगों ने कुछ इसमें से निकाला है, कुछ किसी ने इसको ऐड कर दिया, किसी ने इसमें का कोई प्राणायाम को लेके अपना एक नया पद्धति चालू कर दी है। ये प्रिंसिपल दो है, हठ योग और राजयोग। वेस्टर्न्स लोगों ने फिर इसी का ही एक एक हिस्सा लेके उन्होंने अलग अलग पद्धतियां निकाली है, ध्यान की अलग अलग पद्धतियां, और जिससे उन्होंने फिर एक ही ध्यान की पद्धति को लेकर उसके ऊपर संशोधन किया है। हर एक धर्मों में अलग अलग प्रकार की पद्धतियां हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित जो देखा गया तो ये दो ही पद्धतियां हैं, हठयोग और राजयोग। और हठयोग के अंदर जैसे किसी ने मंत्र लिए हैं या किसी ने प्राणायाम लिया है तो मंत्रा मेडिटेशन फेमस होने लगा, या किसी ने एक प्राणायाम भस्त्रिका को लिया और उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और उसकी पद्धति प्रचलित हो गई और फिर उसके ऊपर संशोधन हुआ। तो वेस्ट में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, TM जिसको कहते हैं, तो उसके ऊपर काफी संशोधन हुआ है। फिर बुद्धिस्ट मेडिटेशन में अलग अलग प्रकार के, जिसमें विपस्सना का प्रचार और प्रसार काफी हुआ है, और इसी तरह से फिर सुदर्शन क्रिया निकाली है, एक प्रकार के प्राणायाम को अलग तरीके से मॉडिफाई करके। हर एक के अपने अपने अनुभव है, लेकिन इन सबको हम पर्सनालिटी के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, जिसमें कई लोग भावना प्रधान होते हैं, कई लोग तर्क वाले होते हैं, ज्ञान को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, वो भावना में नहीं जाते हैं। कई लोग समझते हैं कि काम में ही राम है, ठीक है ना, आप कर्म करते चलो
जी।
तो उस अनुसार इन सब योग को अलग अलग नाम दिए गए भारत में। तो जो लोग बुद्धि प्रधान है, जिनको ज्ञान में रुचि है, ज्ञान की गहराई में जाना, उनके लिए ज्ञान योग ये नाम दिया गया। जिनके अंदर प्यार है, इमोशंस है, भावनाएं है परमात्मा के प्रति, वो भक्ति योग में चले गए। जिनको केवल काम में ही अपने को बिजी रखना अच्छा लगता है, फिर कोई भी कर्म हो, तो उन्होंने कर्म योग नाम दिया है।
हमारी इच्छा शक्ति सबसे बड़ी है, अगर इच्छा है तो इंसान चाहे तो कुछ भी बदल सकता है। फिर हमको भगवान को याद करने की जरूरत क्यों है, या उसकी जरूरत है भी या नहीं?
ये बहुत अच्छा सवाल है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, या विज्ञान और अध्यात्म, ये दोनों का देखने का नजरिया हमको समझना पड़ेगा। साइंस ये मानता है कि कुछ चीजें हैं जिनको हम जानते हैं और कुछ चीजें हैं जिनको हम नहीं जानते। तो जिनको हम नहीं जानते उनको हम ढूंढ सकते हैं, ये साइंस का बिलीफ है, ये मान्यता है। सो देयर आर ओनली टू थिंग्स, नोन एंड अननोन। अध्यात्म उसमें और एक चीज ऐड करता है, अध्यात्म कहता है कुछ चीजें हैं जिनको हम जानते हैं, कुछ चीजें ऐसी है जिनको हम नहीं जानते, जिनको हम जान सकते हैं। लेकिन अध्यात्म साथ में तीसरी एक बात कहता है कि कुछ चीजें ऐसी है जिनको हम कभी जान नहीं सकते हैं।
अच्छा,
और वो चीजें है कि जैसे कि ये पृथ्वी या ये ब्रह्मांड है, जितनी भी चीजें इस दुनिया में है, उसका एंड कहाँ तक है, कहाँ तक ये फैली हुई है, हम इनको नहीं जान सकते। तो साइंस ने उसको नाम दे दिया इन्फिनाइट, इन्फिनिटी है, और उसका एक सिंबल दिया कि 8 अक्षर को आप टेढ़ा रखो तो इन्फिनाइट हो जाता है। पर वो तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आपने गणित की भाषा में उसको इन्फाइनाइट, पर वो कहां तक है? और अगर हमने कहा चलो इसके बाद इतना माइल्स के बाद ये जो जितना भी विश्व है खत्म होता है, जैसे ही मैंने कहा खत्म होता है, मेरे अंदर इमीडिएटली अगला सवाल आता है कि उसके बाद क्या है। तो ये चीजें हम नहीं जान सकते हैं। अभी हम देख रहे साइंस कहां तक पहुंचा है, तो हम मंगल ग्रह पर पहुंचने भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, और ये आकाश गंगा जिसमें हम रहते हैं, सोलर सिस्टम जिसमें, उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, उसमें हम हैं। हमारे बाजू में दूसरी आकाश गंगा है जिसको एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं, उसमें कितने तारे हैं, और ऐसी हजारों आकाश गंगा है। जब हम अपनी ही आकाश गंगा में पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रहे, तो यू कैन इमेजिन हम कहां तक जा सकते। फिर तो केवल अंदाज ही लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक तो यही दिखाई देता है कि कुछ चीजें हैं जिसको हम जानते हैं, कुछ चीजें हैं जिनको हम नहीं जानते, जान सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमेशा ऐसी रहेगी जिनको जानना हमारे शक्ति के बाहर है।
जी, बहुत सुंदर बताया आपने, हम आगे भी इसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज हमारा समय यहाँ पर ही खत्म हुआ है। लेकिन जाने के पहले हम एक बहुत सुंदर मेडिटेशन जरूर करना चाहेंगे।
मेडिटेशन के लिए हम इतना चाहेंगे कि पहले इसमें दो चीजें होती, शरीर और शरीर को चलाने वाली शक्ति। तो राजयोग मेडिटेशन के हिसाब से शरीर एक माध्यम है, बहुत अच्छा है, पांच तत्वों से बना हुआ है और इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति है वो यहाँ पे दो आंखों के बीच में रहती है। तो हम केवल अभी शरीर और उसके साथ ये दो आंखों के बीच में जो चैतन्य शक्ति रहती है उसके ऊपर अपना ध्यान एकाग्र करेंगे ताकि हम उनका अनुभव कर सकें। तो अभी मैं आपको केवल शरीर को रिलैक्स करा के अपना ध्यान दो आंखों के बीच में लेके जाऊंगा और जहां पर हम अपने आप को महसूस करेंगे कि हम एक चैतन्य शक्ति है, शरीर से अलग है। ये जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है जिससे कि हम शरीर को और मन को शांत कर सकते हैं, इससे भी काफी बेनिफिट होता है। तो हम उसका अभ्यास करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जैसे आप गैस के पास है, सिगड़ी के पास है, या प्रेस कर रहे हैं, या टेलीफोन है, या इलेक्ट्रिक मशीन है, तो आप कृपया उसे स्विच ऑफ करें ताकि कोई अनहोनी न हो और आप पूरी तरह से एकाग्र होकर इसका अभ्यास कर सके। आप अपने आप को ऐसे स्थान पर बिठा के रखें जहां आपको डिस्टर्बेंस कम हो और अगले कुछ मिनटों के लिए आप इन शब्दों के ऊपर अपना ध्यान एकाग्र करेंगे। स्वयं को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। अपने चारों तरफ जो भी प्रकंपन है उसके प्रति जागृत हो जाएंगे और उन सभी प्रकंपनों को जागृत से एक्सेप्ट करेंगे परंतु उससे प्रभावित नहीं होंगे। आपका ध्यान चारों तरफ से हटाकर संपूर्ण शरीर के ऊपर एकाग्र करेंगे। अपने आप को महसूस करेंगे कि सिर से लेके पांव के अंगूठे तक मेरे शरीर के अंदर कहां पर तनाव है, खिंचाव है, हलचल है और देखेंगे कि मेरा शरीर कैसा है। अगर आपने अपने शरीर को अच्छी तरह से स्कैन किया तो पता चलता है कि शरीर के कुछ हिस्से जैसे कि कंधे हैं, गर्दन है, कमर है, या पैर है, या सिर की मांसपेशियां, यहाँ पे हमको तनाव होता है तो उसको अपनी इच्छा शक्ति से बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। हल्का और रिलैक्स महसूस करेंगे आपका पूरा शरीर हल्का होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स। जैसे शरीर हल्का होते जा रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आंखों की पलकें भी भारी होती जा रही है और आप खोलने की कोशिश करते हैं फिर भी उसे खोल नहीं पा रहे हैं और एक वेव ऑफ रिलैक्सेशन आपके पूरे शरीर में फैलता हुआ जा रहा है। आप बिल्कुल हल्के हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ध्यान अपना दो आंखों के बीच में लेकर जाएंगे जहां तिलक लगाते हैं और देखेंगे कि वहां पे एक सुंदर दिव्य प्रकाश ज्योति चमक रही है। ये शरीर जैसे एक मंदिर है, इसमें दिव्य ज्योति है। शरीर भारी है पर आप बिल्कुल हल्के हैं। ये शरीर मस्तिष्क के द्वारा चलाया जाता है, मस्तिष्क पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, लेकिन इस मस्तिष्क को कंट्रोल करने वाली आप एक चैतन्य सत्ता है, इस शरीर से बिल्कुल अलग है और आप बिल्कुल शांत स्वरूप है। शरीर भारी, आप बिल्कुल हल्के, आप बिल्कुल शांत स्वरूप है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपका शरीर और मन बिल्कुल शांत होते जा रहा है और इस दिव्य ज्योति से एक प्रकाश निकल कर आपके पूरे शरीर में फैलता हुआ जा रहा है। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, शांत और रिलैक्स। ओम शांति शांति शांति।
आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।
ओम शांति।
दोस्तों, आज की पूरी कड़ी में हमने ये जाना कि मेडिटेशन के कई प्रकार दुनिया में सिखाए जाते हैं। हठ योग और राजयोग ये मुख्य दो प्रकार हैं जिसके आधार से ही अनेक नए प्रकार के मेडिटेशंस बने हैं। ईस्टर्न साइंस से ही वेस्टर्न में मेडिटेशन प्रचलित हुआ है। मेडिटेशन का मुख्य हमारा उपयोग हमने देखा कि हमारे स्वास्थ्य के लिए मानसिक या शारीरिक, इसके लिए लोगों को इसकी जरूरत महसूस होने लगी है। साइंस ऑफ मेडिटेशन पर हम आगे की कड़ी में भी चर्चा करेंगे। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर से मिलेंगे अगले कड़ी में। नमस्ते।